हम अली अकबर मिर्ज़ा की तरफ जाते हैं। आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो दोनों बड़े ममालिक हैं, अमेरिका और रूस, वो उनके सरबराहान मिले थे, लेकिन नज़र ये आता है कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ है कि वो दाइश के ख़िलाफ़ काम करें। इस सिलसिले में बताइए कि इस वक्त आप क्या देखते हैं कि अमेरिका की क्या हिकमत अमली है दाइश के ख़िलाफ़?
देखिए, अमेरिका का मसला ये रहा है कि वो जिन लोगों के खिलाफ जंग करना चाहता है, ISIS, उसमें उसका कोई पार्टनर नहीं है, हकीकी पार्टनर। जो अरब ममालिक कोलिशन में शामिल हुए, उन्होंने क्या किरदार अदा किया जंग में और बमबारी में, ये सबके सामने है। ना होने के बराबर उनका किरदार रहा है, बल्कि कई अरब ममालिक दाश और ISIS की दरपर्दा मदद भी करते हैं, इसलिए कि वो फाइनेंशियली भी और मोरली भी, और लोगों को भेजने के सिलसिले में भी, इसलिए कि वो बशारुल असद को पसंद नहीं करते। दूसरा मसला अमेरिका का ये रहा है कि ठीक है, आप सीरिया में और इराक में दाइश और ISIS के खिलाफ लड़ रहे हैं। इराक में ये आपका एक पार्टनर है, जो एक इराकी हुकूमत है, और कुर्द्स भी मौजूद हैं, लेकिन सीरिया में आपका पार्टनर कौन है? अमेरिका और मगरबी ममालिक और ये अरब ममालिक का जो कोएलिशन बनाया है, इन्होंने 2 साल में की कोशिश की कि यहाँ पर कोई मॉडरेट फोर्सेस तैयार हो सके, तो उनको मुश्किल से 5 लोग मिले हैं अभी तक, सिर्फ 5। और जो एक इन्होंने ग्रुप तैयार किया था 40-50 लोगों का, वो पहले दिन उसका ISIS ने सफाया कर दिया, उसमें से सिर्फ 2-4 ही बचे थे।
जी
तो अमेरिका को ये रियलाइज करना चाहिए, सबसे पहले हकीकतों को हमें रियलाइज करना चाहिए कि ISIS के तो है सीरिया में, लेकिन बशारुल असद को जो हटाने का मसला है, ये हमारे लिए पहली नौइयत का मसला नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं कि यू हैव टू फाइट द कैंसर इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड लिव, सो दैट यू कैन फाइट द स्किन रैश लेटर ऑन।
जी
आपको कैंसर से पहले जंग करनी है, ताकि आप कैंसर से बच के अपनी जान बचाएं। तो फिर ये जो स्किन रैश होती है ना, छोटी सी मामूली सी, ये तो आप बाद में भी इसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले स्किन रैश को से लड़ने पे लग जाए कि जी मुझे ये स्किन रैश जो है ये खत्म करनी है, और इन द मीन टाइम कैंसर जो है फैल के आपको मार दे, तो आप मर जाएंगे और स्किन रैश खत्म नहीं होगा। तो बशारुल असद के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, यकीनन बशारुल असद एक डिक्टेटर है, लेकिन डिक्टेटर तो सऊदी अरब के हुक्मरान भी हैं, डिक्टेटर बहरीन के हुक्मरान भी हैं, वो भी एक मुतलकुल अनान हुक्मरान है, जिनके पास ह्यूमन राइट की बहुत सी वायलेशन उनके मुल्क में रोजाना होती है, तो हम उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे? ना
जी
ये है कि हमने इसको अपनी जिद और अना का मसला बना लिया है, और इसलिए बना लिया है कि वहां पर ईरान, इराक, हिजबुल्ला का एक बहुत ही मजबूत, और सीरिया के हवाले से एक मजबूत अलायंस बन रहा था, कि जो कि हमारे अलाइज जिनको हम कहते हैं सऊदी अरब और इसराइल, उनके लिए एक खतरा बन रहा था। इसलिए हम असद को हटाना चाहते हैं, इस हकीकत को हमें तस्लीम करना चाहिए कि इस तरह से हम असद को नहीं हटा सकेंगे, ना ISIS को शिकस्त दे सकेंगे। और अब ये बात मेरे ख्याल से बराक ओबामा को भी समझ में आ रही है, इसलिए कि पुतिन से मिलने के बाद यकीनन समझौता कुछ तो कोई नहीं हो सका, लेकिन जो लहजे में तब्दीली आई है सदर बराक ओबामा के, उससे ये इंडिकेशन मिलता है कि वो इस बात को कंसीडर करने के लिए तैयार हैं कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन हो, जिस पर बशारुल असद को हटा के कोई नई फोर्सेस सामने ले आए, लेकिन पहली जंग जो होगी प्रायोरिटी होगी अब ISIS होगी। ये मेरे ख्याल से तब्दीली आई है, फ्रांस का भी यही रवैया है, फ्रांस की भी यही पॉलिसी हो गई है, के सदर भी गए थे अभी रशिया, और में जो पार्लियामेंट में आज गुफ्तगू हो रही है उसमें भी ISIS के खिलाफ बात पर। और
आप दुरुस्त कहते हैं कि इस वक्त बरतानिया भी गालिबन फ्रांस की मदद करने को तैयार है कि वहाँ फजाई हमले करके दाइश को हराया जाए, लेकिन ये बताएं कि अमेरिका के अंदर भी एक बात तस्लीम की जाती है कि बग़ैर ज़मीनी फ़ौजों के अमेरिका कभी भी ये जंग नहीं जीत सकता, तो ऐसे में जब सिर्फ फजाई हमले किए जाएं, आपके ख्याल में क्या गुंजाइश बनती है दाइश को हराने की?
यही मसला है, और अमेरिका ने 2 साल इसी चक्कर में जाया कर दिए कि वहां पर कोई उनको रिलायबल पार्टनर मिले जो कि जमीनी जंग कर सके, इसलिए कि अमेरिकन आवाम तैयार नहीं है अपनी फौजों को भेजने के लिए, और अमेरिका को फौजें सारी दुनिया में भेजना भी नहीं चाहिए हर जगह, इसलिए कि मुकामी लोग जो है, मुकामी मुल्क जो है, मुसलमानों के मुल्क जो है चारों तरफ, उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ISIS और दाश के दहशतगर्दों के खिलाफ पहली जंग और हरावल दस्ते का काम वो ममालिक करें। तो अब मसला यह है कि बूट्स वहां पर कौन है, रिलायबल बूट्स वो बशार अल असद की सीरियन आर्मी है, वो है हिजबुल्ला के लोग जो लेबनान से जाके लड़ रहे हैं, वो है ईरानी बैक्ड और इराकी गवर्नमेंट की पुष्पनाई रखते हुए मुख्तलिफ मलेशिया जो जंग कर सकती है, आपके कुर्द्स हैं। लेकिन कुर्द्स का मसला ये है कि हमारे हमने जिन लोगों को नाकाबिले एतबार लोगों को अपना अलाइज बनाया हुआ है वो कुर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जैसे टर्की है। हम टर्की को हम कहते हैं हमारा पार्टनर है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन टर्की की पूरी सरहद जो है और पूरे रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं बशार अल असद के खिलाफ, आईएसएस के खिलाफ नहीं हो रहे, वो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं कुर्द्स के खिलाफ, इसलिए कि टर्की हुकूमत जो है वो कुर्द्स को अपना अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझती है। और उसके अलावा मैं ये बात कह दूं कि सब पूरी दुनिया ये जानती है, अमेरिकन हुकूमत ने भी, वेस्टर्न हुकूमत ने भी, हुकूमतों ने और सारी दुनिया की हुकूमतों और मेजर नेटवर्क टेलीविजन ज़राए अब्लाग ने ये कहा है कि आईएसआईएस के पास फंडिंग ऑयल को बेचकर आती है। मैं भी एग्री करता हूँ। अब सवाल यह है कि अगर आईएसआईएस ऑयल को बेचकर रेवेन्यू कमा रही है तो वो किसी को बेच भी तो रहे ना, वो कौन है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं की जाती कि भाई इनसे आईएसआईएस से ऑयल खरीदने वाले ये लोग हैं। अब रिपोर्ट हमें मिल रही है वो ये है कि सबसे ज्यादा ऑयल जो ब्लैक मार्केट में आईएसआईएस से खरीदा जाता है वो टर्की में खरीदा जाता है।
अच्छा।
और उससे पैसा मिलता है आईएसआईएस को। तो ये जो हमारे अलाइज है नाकाबिले एतबार किस्म के अलाइज, ये भी तो हमारे लिए एक मसला बने हुए हैं ना।